ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक पेश किया जाएगा और दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के जरिए घरों के अधिकार का एक रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री ने राज्य में जल्द से जल्द कानूनों के 100% क्रियान्वयन पर भी बल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। 1,000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की शिखा राय और नीरज बसोया ने नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिड़लान और वंदना कुमारी ने भी नामांकन भरे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाशिक में 2027 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यातायात और भीड़ प्रबंधन, आवास सुविधाओं, क्षेत्र में नदियों की सफाई और पुनर्उद्धार के अलावा बुनियादी ढांचे के बारे में भी चर्चा की गई। श्री फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को नाशिक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को एक धार्मिक गलियारे और नाशिक को एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एक सम्मेलन केंद्र और एक महाकुंभ की स्थापना का सुझाव दिया जहां भक्त भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का अनुभव कर सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 20 से 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वार्षिक विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके साथ राज्य के उद्योग मंत्री उदय सावंत भी जाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में श्री फडणवीस ने 3 बार मंच का दौरा किया था, जिससे उस अवधि के दौरान औद्योगिक विकास के मामले में महाराष्ट्र 5वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच गया था। रूसी सेना में कार्यरत कुल 12 भारतीय नागरिकों की जान संघर्ष में अब तक जा चुकी है और 16 भारतीय नागरिक अभी लापता है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूसी सेना में अपनी सेवाएं देने वाले अब तक 96 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना द्वारा मुक्त कर दिया गया है, वे भारत लौट चुके हैं। इसराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सरकार को इसे अपनाने की सिफारिश की है। यह गाजा के इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कतर, अमेरिका और मिस्र द्वारा बातचीत किए गए इस समझौते से चल रही हिंसा पर रोक लगेगी, जिसके कारण दोनों पक्षों में काफी लोग हताहत हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कल कहा था कि सुरक्षा कैबिनेट ने सभी कूटनीतिक, सुरक्षा और मानवीय पहलुओं के मूल्यांकन के बाद यह सिफारिश की है कि प्रस्तावित समझौता युद्ध के उद्देश्यों की प्राप्ति का समर्थन करता है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और अपने सभी मैचों में अजय रही हैं। भारतीय पुरुष टीम ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में श्रीलंका पर 140 से शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।